ओम शांति। देखिए, आपने जो कोर्स में सुना कि श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, वास्तव में यहाँ पर हमको श्री कृष्ण को जानना होगा कि श्री कृष्ण कौन है। ये जो श्री कृष्ण नाम है, ये वास्तव में परमात्मा का नाम है, जिसका अर्थ है कृष्ण माना आकर्षण मूरत, जो सर्व को अपनी तरफ आकर्षित करे उसको कृष्ण कहते हैं। जो श्री कृष्ण हैं वो आकर्षण मूरत हैं, इतने दिव्य हैं, अलौकिक हैं, जिनको हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का व्यक्ति आत्मा स्वीकार करती है। गीता के अंदर, अगर आपने गीता पढ़ी है तो गीता के अंदर भी स्पष्ट लिखा है कि मैं निराकार हूं, अजन्मा हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, अयोनिज हूं, अकाल मूरत हूं। यानी मैं जन्म नहीं लेता। अजन्मा माना मैं जन्म नहीं लेता, मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते। मैं कोई कर्म नहीं करता, अकर्म, अकर्ता, यानी मनुष्य के कंपैरिजन में ये कहा गया है। मुझे काल नहीं खा सकता। मैं कोई भी अच्छे बुरे कर्म का भोगना नहीं भोगता, इसलिए अभोक्ता कहा गया है। तो वास्तव में श्री कृष्ण नाम निराकार परमात्मा का है, जिसको हमने राम भी कह दिया, जिसको हमने श्री कृष्ण भी कह दिया। तो जो गीता का भगवान है वो निराकार है, और गीता का भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो कब आते हैं? जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब श्री कृष्ण का अवतरण होता है, यानी परमात्मा का अवतरण होता है। तो जब होता क्या है कि कलयुग के एंड में जब भगवान आते हैं, परमात्मा निराकार, जिनको हमने शिव भी कहा, चाहे हम उसको राम कहें, चाहे उसको श्री कृष्ण कहें, ये तीनों नाम निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा के हैं। राम का भी जो वर्णन है, राम भी निराकार है, इसलिए कहा गया है रामायण में, बिन पग चलहे सुनहे बिन काना, बिन कर कर्म करहे विदनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता अति योगी। यानी बिना मुख के रसास्वादन करते हैं, बोलते हैं, बिना पैरों के चलते हैं, बिना हाथों के कर्म करते हैं, तो ये कौन है? ये शरीर की बात ही नहीं है। चिदानंदमय, सच्चिदानंदमय देह तिहारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपकी देह माना शरीर जो है वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, जो विकारों से रहित है वो आपको जानने का अधिकारी है। तो ये यहां पर आपको ये जब समझ में आएगा कि जो हमने बताया ना कि आत्मा का पिता परमात्मा है, आत्मा ज्योति, तो उसका पिता भी कैसा हुआ? ज्योति स्वरूप हुआ। उसी की यादगार में हम शाम को ज्योति जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, रात को अंधेरा होते ही लाइट जलाते हैं तो उनको नमन करते हैं, प्रकाश को नमन करते हैं। तो ये जब हम जानते हैं कि ये निराकार ज्योति स्वरूप है परमात्मा, तो वही कृष्ण है, वही शिव है, वही राम है। अब ये इनकी जरूरत कब पड़ी? जब कलयुग के एंड में, जब पापाचार, अत्याचार, रावण भी हो गया, कंस भी हो गया। आज देखिए सारे पात्र हैं, रावण भी है, कंस भी है, दुशासन भी है, शिशुपाल भी है, 101 जो कौरव दिखाए हैं, 100 कौरव दिखाए हैं वो भी हैं, पांडव भी हैं। तो आज ये युद्ध का समय ये है, महाभारत काल ये है, रामायण का काल अभी चल रहा है। रामायण मान राम के आयन की कहानी, या परमात्मा राम इस सृष्टि पर आते हैं। तो एक ही कहानी को अलग अलग शास्त्रों के रूप में अलग अलग कथाकारों ने अलग अलग समय पर लिख दिया, लेकिन उसका आध्यात्मिक मतलब यही है कि जब परमात्मा धर्म की अति ग्लानी होती है तब आते हैं। अब जब सृष्टि परिवर्तन हो जाती है, एक समय ऐसा आता है सब आत्माएं पति से पावन बन जाती हैं, परमात्मा आकर के सृष्टि को परिवर्तन कर देते हैं, तो उसके बाद में कलयुग के बाद में नेक्स्ट चीज क्या आती है? नेक्स्ट युग कौन सा आएगा? सत्ययुग आएगा। जैसे चक्र है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उसी प्रकार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के बाद क्या आएगा? सत्ययुग। तो सत्ययुग में जब सत्ययुग का आरंभ होता है तो कलयुग के जस्ट बाद सत्ययुग का आरंभ होता है। तो सत्ययुग का जो पहला प्रिंस है वो भी बड़ा सुंदर होता है, राजकुमार, जो कि नेक्स्ट टू गॉड हम उसको कह सकते हैं। तो जब उनका नामकरण संस्कार होता है तो नामकरण में परमात्मा का नाम उस बच्चे को दे दिया जाता है, यानी कृष्ण नाम रखा जाता है। क्योंकि परमात्मा भी बहुत सुंदर थे, उसके समान नेक्स्ट टू गॉड वो सुंदर बालक, राजकुमार, प्रिंस, वो श्री कृष्ण कहलाते हैं। और उनके समय पर कोई भी विकार नहीं होते, कोई बुराई नहीं होती, इसलिए श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक की उपाधि दी गई है। हम कहते हैं श्री कृष्ण 16 कलाओं से आए थे। 16 कला माना, कहते हैं ना, 16 आना सच, ये बात 16 आना सच है। तो 16 आना सच माना जो 100% कंप्लीट है, जिसमें कोई अवगुण नहीं, कोई दोष नहीं। अब मान लीजिए, अब सोचने की बात है कि जहां पर ऐसा राजकुमार होगा, जहां ऐसी दुनिया का आरंभ जो करेगा, तो उसकी संतान कैसी होगी? वो भी दैवी संतान होगी। उसको कहते हैं हम देवता युग, सत्युग माना सत्य का युग, जहां पर असत्य का नामो निशान नहीं। तो उस कृष्ण के साथ में तो कंस हो ही नहीं सकता, वहां तो हिंसा हो ही नहीं सकती। यहां जो कलयुगी समय है, यहां का जो कृष्ण परमात्मा है, उसके साथ में यहां कंस भी है, जरासंध भी है, शिशुपाल भी है, यहां सारे राक्षस हैं, रावण भी है। तो ये बात बहुत गुह्य है समझने की। लेकिन सत्युग में तो वहां तो न तो ज्ञान की आवश्यकता होगी, न वहां पर इस प्रकार का। अगर मान लीजिए सत्युग में भी कंस आ जाए, है ना, त्रेता में राम के साथ रावण आ जाए, तो वहां भी वही गंदगी हो जाए जो आज यहां पर है। तो ऐसा वहां नहीं होता है। सत्युग और त्रेता दोनों युग में 100% वहां पर सुख शांति होती है। वहां कोई भी रावण कंस नहीं होता, वो जितने भी पात्र हैं सब अब आज के समय में विद्यमान हैं। त्रेता में जो राम दिखाए हैं वो भी 14 कला से दिखाए हैं। 14 कला माना थोड़ा सा कम है श्री कृष्ण से, लेकिन है तो वो भी परिपूर्ण, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुषोत्तम श्री राम। तो वहां तो सुख शांति है, वहां तो दैवी राज्य है, राम राज्य है। राम राज्य कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक माना शारीरिक, दैविक माना कोई भी दिव्य गुणों से युक्त, कोई कमी नहीं होती है वहां पे, किसी तरह का भौतिक हलचल नहीं होती है, प्रकृति का कोई प्रकोप या प्रकृति का कोई दुख, अधिक गर्मी अधिक सर्दी वहां नहीं होती है, इसलिए कहते हैं। उसका वर्णन हम रामायण में सुनते हैं। लेकिन अब हमें समझने की जरूरत है कि गलती क्या हुई भक्ति मार्ग में। जो परमात्मा निराकार राम थे वो आंखों से तो दिखते नहीं है, तो लोगों ने उस कहानी को एक पात्र का रूप दे करके और दिखा दिया, तो हमने समझा कोई फिजिकल रूप में होंगे, लेकिन परमात्मा निराकार है। ओम शांति।